ने क्वेश्चन निकाले हैं क्या?
कर्म कब भाग्य बनता है, कब संबंध एवं कब बंधन बनता है, इसका आधार क्या है?
दूसरा भी सुना।
दूसरा फिर क्वेश्चन है, संगठन में रहते आगे बढ़ने का आधार व साधन क्या है?
दोनों क्वेश्चन अच्छे। वास्तव में क्वेश्चन पहले हमको मिल जाते हैं, समझा? पहले क्वेश्चन हमको क्लास के पहले मिलता है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आंसर दूं फिर रात को मुझे दे देगा, कल सुबह के क्लास में और आंसर भी सुना देंगे। परंतु ये दो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं। एक, किस कर्म से भाग्य बनता है, किस कर्म से बंधन होता है। जिस घड़ी हमको कर्म फिलॉसफी का ज्ञान मिला, और ये भी बता देते हैं आंसर जब मिल जावे ना, फिर सभी समझे ये जवाब मिल गया ठीक तो ठीक। सब पचर सो ना, तो टीचर्स को तो शार्ट में समझाना होता है, थोड़े शब्दों में जवाब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। परंतु किसको और स्पष्ट कर सुनने की इच्छा हो तो करके अंगुली ऐसे करे। तो जिस घड़ी कर्म फिलॉसफी का ज्ञान मिला है, उस घड़ी हम वो कर्म करना शुरू करने की हमको इच्छा हुई है जिससे हमारा भाग्य बने। बंधन से जो कर्म होता है या कर्म से जो बंधन बनता है उसमें खुशी नहीं होती है, असल नहीं होती है। एक अपने इच्छा अनुसार, दूसरा दूसरों के इच्छा अनुसार, तीसरा लोगों को देख करके, चौथा अपने पास्ट के संस्कारों वश कर्म करते हैं। एक लोगों को देख करके कर्म करते हैं, दूसरा जिनके साथ संबंध होता है उनके इच्छाओं अनुसार कर्म करते हैं, तीसरा अपने संस्कारों वश कर्म करते हैं, चौथा अपने स्वार्थ वश भी कर्म करते हैं, जैसे बंधन बनता है। अभी हम जो कर्म करते हैं, पहले तो कर्म के अंदर हमारी आसक्ति इच्छा ममता का त्याग है, फिर कर्म करना शुरू किया है। इच्छा ममता का त्याग, और जो कर्म कर रहे हैं ना, अंदर से खुशी पैदा हो रही है, वो करने का जो संकल्प भी उठता है ना, उसकी खुशी पैदा होती है, करने के बाद भी खुशी जमा महसूस होती है, तो उस समय अल्प काल की खुशी या अविनाशी खुशी, सदा काल की खुशी, उसमें बिल्कुल चलो शादी होगी फलाना होगा, अल्प काल की खुशी है, लोगों को दिखाने के लिए खुशी है। खुद को अंदर पूछिए अपने आप से, खुशी आई गई कहां, क्योंकि उसके पीछे गमी है ही, उस खुशी के पीछे गमी है ही, और इस खुशी के पीछे सदा खुशी है ही, इसके पीछे गमी नहीं है। गमी समझते हो ना, दुख नहीं है। वो जो बंधन वाला है ना, तो उसमें खतरा भी है आगे चल करके, ये बंधन कहां तक हमारा शुरू हुआ, कभी पूरा होगा। समझ, खास जिस घड़ी कन्या की सगाई होती है उस घड़ी बंधन शुरू हो जाता है, बाकी के पहले स्वतंत्र है। चलो बंद, फिर भी जो कर्म करते हैं ना, दुनिया को देख करके फैशन करना, फलाना करना, ये करना, वो करना, दुनिया को देख करके करते हैं, उसमें कोई स्पिरिचुअल समझ नहीं है, ना नॉलेज है, ना प्राप्ति है, इसमें स्पिरिचुअल अध्यात्म नॉलेज है। कर्म भी ऐसा है, प्राप्ति भी ऐसी है, उसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो उनमें क्या भाग्य बनेगा, कुछ नहीं। और कर्म करते भी है लोभ मोहवश, अभिमानवश। तो वो जिस वश कर्म करते हैं लोभ मोह अभिमानवश, तो वो तो बंधन में डालने वाली है, लोभ मोह बंधन में डालने वाला है वो, और ये हमारे करे बंधन में लाने वाले हो गए लोभ मोह या अभिमान। और ये है हम फ्री होने के लिए कर्म करते हैं, इन बंधनों से, लोभ मोह के बंधन से फ्री होने के लिए कर्म कर रहे हैं। भाग्यवान है जो फ्री हो रहे हैं, फ्री होने के लिए कर रहे हैं। ये है भाग्य बनाने का कर्म, वो है बंधन में फंसने का कर्म। समझिए या ठीक है हा? कैसे उसमें बंधन, उसमें त्याग है, लोभ मोह का त्याग है, फिर कर्म है। तो कहा जाता है त्याग से ही भाग्य बनता है ना, शुरू हो जाता है। क्या चीज का त्याग किया? लोभ मोह का, जिससे बुराइयों का त्याग हो गया। लोभ मोह को छोड़ा तो बुरे कर्मों का त्याग हो गया, त्याग हो गया तो भाग्य बनना शुरू हो गया। बिगर त्याग के, अच्छे बुराइयों के छोड़ने के बिगर अच्छाई क्या होती है? बुद्धि तक है, कर्म तक नहीं है। अच्छे बुरे को हर एक समझता है, पद बुद्धि तक करते है बुरा, सोचते है दूसरा, समझते ये बुरा है फिर भी करते हैं। क्यों? बंधन है, लोभ मोह है, वो कराता है। अब भी जो अच्छा है ना, वो ही करने की इच्छा है हमको, बुरा हमारे से हो नहीं सकता है। जो बंधन में डालने वाला कर्म है वो हमारे से हो नहीं सकता है। क्यों बंधन में आऊं? पहले बंधनों से मुक्त होना है, अब बंधन नए सिर मुझे चालू करना ही नहीं है, ये फैसला है माइंड का। तो हर कर्म करते भी उनको योगी होकर के रहना है, भोगी होकर के नहीं रहना है, या रोगी होकर के नहीं रहना है। बंधन वाला कर्म भोगी रोगी बनाता है, और भाग्य बनाने वाला कर्म योगी बना देता है। उनसे योगी बन जाते हो, उससे भोगी और रोगी बन जाते, फर्क पड़ जाता है बहुत। वो अंदर से एक कर्म भोग चालू कर देते हैं अपनी। तो बाबा ने कहा था कर्म भोग हो भी पास्ट वालों का, उसको कर्म योग में परिवर्तन कर लो। ऐसा श्रेष्ठ योग हमारा हो जाए, श्रेष्ठ कर्म हो जाए, जो भोग कर्म भोग बदल करके कर्म योग में आ जाए। ऐसा कर्म न हो जो हमको उसका का भोग ना भोगनी पड़े, और कर्म योग फिर ऐसा हो, कर्म भी श्रेष्ठ हो, योग भी श्रेष्ठ हो, जिससे पूर्व का हिसाब किताब भी चुक्त होता जाए। ये भी भाग्य की बात है, इतना अच्छा कर्म होता रहे हमारे से। अच्छा, दूसरा क्या कहा? संगठन में रहते आगे बढ़ने की क्या क्या आधार है? एक होता है इंडिविजुअल, अकेला पुरुषार्थ, दूसरा है संगठन में रहने का। हमारा विचार अनुभव ये कहते हैं, जिसको पुरुषार्थ करना है ना, लगन है ना पुरुषार्थ करने के लिए, अकेला है तो भी पुरुषार्थ उसको कभी ढीला नहीं हो सकता। भाई संगठन हो भी तो मैं पुरुषार्थ करूं, पर संगठन है तो संगठन कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता। कितना भी बड़ा संगठन हो, दो का हो या दस का हो या बीस के बीच में हो या सैकड़ों के बीच में हो, संगठन से गुण ग्रहण करने की जो शक्ति है ना, वो पुरुषार्थ में और आगे बढ़ाती है। अगर जरा अवगुण नोट होता है, तेरा मेरा होता है, ईर्ष्या द्वेष होता है, तो पुरुषार्थ में नुकसान पड़ता है। तो कहते संगठन में रहना मरा ले मुश्किल है, क्यों खुद पुरुषार्थ करना नहीं जानते हैं तो संगठन से मुश्किल दिखाई पड़ती है। अगर इतना संगठन, इतने हम बाबा के जितने बच्चे हैं और हजारों बच्चे पैदा होते जाएंगे, तो वो बच्चे बने हैं किस विशेषता से बने हैं, बनेंगे भी विशेषता से। हर एक अपने अंदर को देखे, किस कोई तो लगन थी जिसने मुझे बाबा का बनाया, कोई तो बात थी। ऐसे हर एक में कोई तो गुण होगा, कोई तो बात होगी जो बाबा को अपना बनाया। तो सबके गुण और विशेषता को देख संगठन में बल मिलता है, बहुत बल मिलता है पुरुषार्थ में, परंतु उसको मिलता है जो पुरुषार्थ करने जानता है। पुरुषार्थ क्या है? अंदर आत्मा अशरीर रहने का, मास्टर होकर के रहने का नेचुरल अभ्यास है, नेचुरल। बाबा से गुप्त अपना गहरा संबंध हो, अपने बाबा से मिली हुई शिक्षा अनुसार अपने कर्म में सावधानी हो, तो संगठन में रहते औरों को भी के लिए भी प्रेरणादायक पुरुषार्थ होता है। जैसे आज सवेरे हमारी मीटिंग के अंदर सब हर एक अपना अपना थोड़ा पुरुषार्थ सुना रहे थे, जिस करी हमारे विश्व रतन दादा बात कर रहा था, सबको इतनी अच्छी लग रही थी उसकी बात करना, बहुत अच्छी लग रही थी। और हम लोगों को पता है सारी अभी उसकी 70 वर्ष की उम्र होंगी, सारा कॉलेज से दादा यहाँ आया है पढ़ाई में, कभी ना डिस्टर्ब हुआ होगा, कभी ना डिस्टर्ब किसको किया होगा, इतने बड़े संगठन में रहते। आज से संगठन में रहा है, कोई अकेला कोई सेंटर संभालने के लिए कोई बाहर नहीं गया है। ऑनेस्टी में नंबर वन है तो हमारे और भाई कहते थे जो हम बाजू में रूम में सोते हैं, हमको पता है हम घर ही नहीं देखेंगे, पर दादा का हिलना देखा, उठना देखा, माना 4 बजे है, 4:05 हुआ है। अलार्म की हम लोग जो बाजू के रूम में सोते हैं उनको अलार्म की जरूरत नहीं है, दादा उठा माना, दादा कमरे से बाहर निकला माना ये टाइम हुआ है। तो उसने कभी किसको कहा नहीं होगा उठो जागो। मधुबन में आप सब सदैं देखेंगे 4 बजे के योग में दादा एक्यूरेट 1 मिनट पहले बैठा हुआ है। आज बाबा को अभिव्यक्त हुए जितना वर्ष हुआ है उतने, तो उस दिन से लेकर के उसको ये ड्यूटी मिली है, ये संगठन में बैठे है पुरुषार्थ। तुझे अच्छी ये बात सुनाई तो मैं कभी भी कोई भी काम करता हूँ, अकाउंट्स का काम करता है, कभी भी अपसेट नहीं होता हूँ, समझता हूँ बाबा करा रहा है, एक्यूरेट करेंगे अच्छा होता है। आवाज कम करता है, काम बहुत करता है, ये हम शुरू से लेकर के देख रहे हैं। आवाज में देखेंगे और खाना और खाएंगे ना, बातचीत करेंगे, किसने पूछा तो कोई खाने पर बात करते हैं, कोई नहीं करता है तो फिर नहीं करता है तो क्या, तो हमारे पास दादा का मिसाल है, कभी नहीं करेंगे खाना ऐसे ही अपने बस जैसे बाबा का डायरेक्शन है, थाली ली और शांति से बैठ के कहीं अचानक जाकर देखेंगे दादा के खाने का खाना तरीका और संग से न्यारा, सबसे न्यारा है। फिर अच्छी बात सुनाई हमको ब्रजमोहन भाई, और हम भी अचानक उस दिन दादा के रूम में गए, कपड़ा वगैरह इतना, बिस्तरा ये, स्वच्छता सफाई इतनी अच्छी, इतनी अच्छी, कब्र में कपड़ा कैसे रखा हुआ है, फलाना ऐसा रखा, एकदम सफाई। उनके रूम में कभी भी जाएंगे ना सफाई होगी। ये है संगठन में रहते, औरों के कोई भी कमी को ना देखो, मुझे कैसे संपूर्ण बन के रहना है ये ध्यान रखना होता है। मुझे संपूर्ण होकर के रहना है, अब न बनूंगी तो कब बनेंगी। और संगठन बड़े होते ही तो नंबर मिलता है, सर्टिफिकेट अकेला नहीं पढ़, कोई स्कूल से बाहर पढ़े उसको सर्टिफिकेट मिलेगा क्या स्कूल से? 50-100 स्टूडेंट के बीच में कहा जाएगा ये पहला नंबर है, ये 10वां नंबर है, तब ये एक दादा का नाम क्यों लिया? इसलिए जो आज पांच हम कहेंगे 50 बरस में इसका पुरुषार्थ, जब भी योग बट्टी का, जब भी साइलेंस का, जब भी मूवी का मिलेगा तो इसका नंबर फर्स्ट मिलता है, हमेशा इनाम मिलता है, शुरू से लेकर के इसको इस बात में नाम मिलता है। एक महीना बोलो ना नहीं बोलने का है तो नहीं बोलेगा। और हमने ये देखा यज्ञ के सारी कोई भी काम कभी इसको मिला हुआ होगा, इसने एक्यूरेट संभाला होगा, रोटी पकाने का, पानी गर्म करने का, पोस्ट ले जाने का, फलाना करने का, अभी तो करके अकाउंट्स का, पहले शुरू में इतना, और डॉक्टर का, हमारे जैसे बनारस ही बैठा हुआ है उस अस्पताल में इंजेक्शन लगाने का, वो करने का, सर जो भी काम इसको यज्ञ सेवा का मिले न मिले, पर जिसमें जिस काम की जरूरत है उसमें दादा हाजिर है। तो ये कैसे समझो, और बोलना चलना बहुत मीठा, न बातों में आना न बहुत बात करना, संगठन में हमारे ना आना, न बहुत बातों में आना न बहुत बात करना, कम बोलना, मीठा बोलना, थोड़ा बोलना, अच्छा बोलना। टाइम वेस्ट होता है बहुत बातों करने में, बहुत बातों में जाने में, अपने आप से मेरा क्या काम है, मैं अपनी एक्यूरेट ड्यूटी में आऊं, मर्यादा में रहूं, दिनचर्या मेरी अच्छी हो। कोई कहे मैं बोर होते हैं तो उसके पास अक्ल नहीं है क्या? इतना ज्ञान है लिखने का, पढ़ने का, एक्यूरेट अपने पाठ बजे सब खर्च कर सकता है, किसी ने मेरे से पूछा समझो किसी में एक कला है तो उसमें दूसरी कला आ सकती है, पहले से एक कला है जिस विशेषता से बाबा के घर आया है या लगता है इसमें, पर दूसरी विशेषता उसमें आ सकती, कला आ सकती है, आ सकती है ना। तो एक कला को अगर दैयमानी स्थिति से बाबा के दीवी कला को समझ करके अगर यूज करता है तो और कलाएं उसके पास आती है, आशीर्वाद दुआओं की तरफ से, क्यों एक कला सब अच्छी तरह, उसका अभिमान नहीं है मेरे में ये कला है इसमें नहीं है, अभिमान नहीं है, अच्छा बाबा ने मेरा थोड़ा ये यूज किया, शुक्रिया। जैसे हम भोग लगाए ना प्यार से खाना बनाते हैं समझो, ले आते हैं बाबा के आगे, तो हम और नहीं बाबा थोड़ा स्वीकार, बाबा थोड़ा स्वीकार कर, करता थोड़ा है, खुशी बहुत होती है। क्यों खुशी होती है? तो हमने जितने प्रेम से बनाया ना बाबा ने स्वीकार किया, ऐसे जितने जो कोई गुण है बाबा ने मेरा स्वीकार किया, शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात। तो क्यों भगवान को ऑफर किया जाता है, कोई चीज क्यों ऑफर किया जाता है? उसके उसमें एक वो अलौकिकता, वो वासना भर जाती है, उस टाइम हम अपन को भाग्यवान महसूस करते हैं। भक्ति मार्ग में भी भगवान की आगे पूजा करते करते, पाठ करते करते अचानक दर्शन हो जाता है तो कितनी खुशी, कितनी खुशी हो जाती है। वह इतनी भक्ति की, उसका अच्छा सुदर्शन कराया भगवान ने, उसकी खुशी बहुत हो गई। तो संगठन में रहते अपनी निजी योग युक्त रहने की जो लगन है ना, वो कभी कम ना हो। सबको हमारे ज्ञान की, योग की, धारणा की, सेवा की, शांतिमय स्थिति की अनुभूति जो हमारी, वो हमारे संग में जो रहने वाले उनको होती जावे। कई बार लोग बाहर वाले पूछते, हम कहते हैं कि हम, तुम क्यों बाहर आए सेवा पर? हम कहते हैं हमको वास्तव अब्बू जैसे पहाड़ पर इतने आनंद में बैठने वाले, काहे को जरूरत पड़ी है बाहर जाए इधर उधर। जो अनुभव किया वह है और अनुभव कराने के लिए यहां बैठ जाएंगे तो कैसे बाहर जाएंगे? बाहर वालों को ऐसे कैसे ये हम ज्ञान दान कर सकेंगे? जरूरत सबको है, इसलिए एक ज्ञान दान सर्वोत्तम दान है, इसलिए जाते हैं। बस बुद्धि योग हमारा यहाँ है जहां हमारे को बाबा पर आने वाला बैठ। तो कहां भी रहते बुद्धि योग बाबा जो हमारे पर आने वाला है, जो परमधाम में ले जाने वाला है, वहां लगा रहे। ये है संगठन में रहते युक्ति युक्त, योग युक्त, ज्ञान युक्त, राज युक्त रहने की विधि, उनसे सिद्धि मिलती है जरूर। ज्ञान युक्त रहो, रोज योग युक्त रहो, राज युक्त, सब राज बुद्धि में है तो नाराज होने की कोई बात ही नहीं है, किससे भी नाराज होने ना। तो नाराज कभी ना रहे, सदा राजी रहे। संगठन कितना बड़ा हो, नाराज कभी होने की बात ही नहीं। अच्छा, जब सबके सब संकल्प शांत हो जाते हैं, क्या हो जाता है? वायुमंडल में शांति आ जाती है। वही संगठन है, पर संगठन में इतनी शांति आती जो अकेलेपन में नहीं आती। अकेला इतना शांति का अनुभव नहीं कर सकते जितना संगठन, जितने बड़े संगठन में बैठे शांति का अनुभव कर सकते। ये हमारे साकार बाबा की बहुत बहुत अच्छी सदाई हम बच्चों को प्रेरणा मिली है, जो प्रैक्टिकल अमल में बहुत कम आ रही है। और हम ध्यान पर रखते हुए ये बाबा की आश पूर्ण होती रहे। बाबा कहते थे, जैसे अभी हम लोग बात करते करते सब शांत हो गए, बाबा कहते थे बच्चे जहां भाषण करो ना, जहां जाओ ना, तुम बात करते 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 इतना सन्नाटा हो जाना चाहिए, इतना सन्नाटा हो जाना, सब जैसे पता नहीं बाहर वाले सुनते सुनते साइलेंस में ऐसे चले जाए, जो अंदर से हर एक की आवाज निकले, वाह भगवान इतनी शांति। तो जब बड़े बड़े प्रोग्राम विदेश में होते हैं तो हमारे पास ये बाबा का महावाक्य कानों में जो पड़ा हुआ है, वो दृश्य बाबा देखनी चाहता है। तो कई बार ये अनुभव हुआ है, कितनी बड़ी सभा होंगी बाहर वालों की, चाहे अपने ब्राह्मणों की, बैठे बैठे साइलेंस हो जाए।
संगठन में जैसे बाबा एक सेकंड में दृष्टि दे के, तो हम साकार में देखते थे रात को बाबा जब याद में ऐसे ऐसे दृष्टि देते, जैसे लाइट हाउस घूम गया वो करंट, वो सेकंड की एक मिनट की बाबा की दृष्टि की लहर जो है ना अंतर ऐसे घूम जाती है, जो कभी भी वो बुद्धि से चाहे अंदर से निकल नहीं सकती है। जो बातें सुनी हुई है वो भूल सकती है, जो अनुभव है भूल नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है अनुभवी ही जाने इस सुख को। तो अनुभवी जो है ना, क्या अनुभव करता है, क्या अनुभव कराने चाहता है? सुख का अनुभव, जिस सुख में शांति प्रेम आनंद समाया हुआ है। तो हर एक अपने आप को देखे मैं अनुभव की मूर्ति हूं, अनुभव को मूर्ति बनाएगा। जो अनुभव की मूर्ति होंगे ना, तो हमारे मुख से अनुभव सुनाने की जरूरत नहीं होगी, मूर्ति अनुभव करा लेंगी। पहले अनुभव से मूर्ति बने, फिर मूर्ति अनुभव कराएंगी। अनुभव हमारा इतना एक बड़ा गहरा हो, जैसे सागर की जितनी गहराई में जाओ उतना रतन निकलते हैं। दो प्रकार से हमारे को बहुत कमाई है, या तो सागर के अंत में चले आओ, गहराई में चले जाओ, या तो सूर्य चंद्रमा के पार चले जाओ। ज्ञान की गहराई में जाओ, ज्ञान की गहराई में जाते हम उस पार चले जाते हैं। बुद्धि पार ब्रह्म महतत्व पे रहने वाले परमेश्वर के पास चली जाती है, इस दुनिया से पार। पार वो रहता है जो प्राम है, पार वो रहता है जिसका खेवे के हाथ में निश्वास है, खेवैया मुझे पार ले जा रहा है, मेरी डोरी तेरे हाथ है। विश्वास से पार जा रहे हैं, एक तो बाबा में विश्वास है, दूसरा ज्ञान से जो जीवन परिवर्तन हो गया है ना, इसलिए अपन में विश्वास हो गया है, जीवन परिवर्तन का विश्वास है। अगर जीवन जिसकी परिवर्तन नहीं होती, जीवन जिन न इधर की न उधरती है, तो विश्वास नहीं होता है, दूसरों को भी नहीं होता है, खुद को भी नहीं होता। कहीं थोड़ा ठहरो, जिन मैं रेडी नहीं हूं, माना जीवन परिवर्तन हो जाए तो उसको पर में विश्वास हो जाता है। परिवर्तन बहुत हो गया, बाकी थोड़ा जो है ना हो जाएगा, विश्वास है ना हो जाएगा। कितना परिवर्तन हो गया, बहुत हो गया, खान पान रहन सहन बोल चाल सारा बदल गया। अभी क्या है, सिर्फ संपूर्ण बनने का, और कुछ नहीं है। संपूर्ण बनना भी सहज है, क्योंकि हमारे सामने बाबा ने ऐसे आईने की तरह से संपूर्ण स्थिति क्या होती है वो बाबा ने दिखा दी है, और कई बार आप लोगों को कभी कभी अनुभव होता होगा ये संपूर्ण होंगी, जिसको भले अभी बने नहीं है, संपूर्ण स्थिति क्या होती है जो अपने विचारों से कभी अनुभव से महसूस करते हाथ उठाओ। मेरा क्वेश्चन समझा, संपूर्ण स्थिति क्या होती है अपने बुद्धि चाहे अनुभव के द्वारा जो महसूस करते ये संपूर्ण स्थिति होंगी, वो हाथ उठाओ। थोड़े क्यों, क्वेश्चन नहीं समझा क्या? संपूर्णता क्या, उनके चिन्ह क्या होंगे, क्यों जो बात बुद्धि से समझी जाती है ना उसको अच्छी तरह से पा सकते हैं, ध्यान में रखते हैं, इंटरेस्ट है, बहुत इच्छा है उस स्टेट को मैं लाऊं, जल्दी लाऊं, वो संस्कार वो चिन्ह में हमारे में अभी आ जाना चाहिए। संपूर्णता को खींचो ना तो बल जल्दी आ सकती है, और आप भी थोड़ा जल्दी भागो उस तरफ, उसको खींचो और आप भागो, दोनों काम करो, दौड़ी लगाओ मुझे संपूर्णता को पाना है, तो वो भी जल्दी आ सकती है, मैं जल्दी जा सकती हूं। सिर्फ कमियों को देखने को मैं टाइम वेस्ट नहीं कराओ, संपूर्णता को सामने रखो जिसमें कोई कर्म बंधन नहीं, कोई कमी नहीं, कोई व्यक्त भाव नहीं, कोई देह अभिमान की अंश नहीं है, वही निराकारी निरंकारी निर्विकारी। ये तीन बातों को सामने रख करके हम संपूर्ण हो सकते हैं, निर्विकारी निरंकारी, अब वो दोनों बनते हैं निराकारी बनने से। तो पहले निराकारी स्थिति को अंदर मजबूत बनाते चलो तो निर्विकारी भी बनते हैं, तो निरंकारी भी बनते हैं। कोई जो अंदर विकार में जा रहे हैं, निराकारी स्थिति में इतनी शक्ति है, विकार सारी साकारी सृष्टि से आए हैं, निराकारी स्थिति से वो गुम हो जाते हैं, ये यहाँ के रह जाते हैं, मैं वहां की हो जाती हूँ। समझा, ये ट्रिक है, युक्ति है, ये यहां रह गए मैं वहां हो गई, तो यहां वाले वहां पहुंच नहीं सकेंगे। एक युक्ति है, बाबा कहते तुम मेरे पास आओ, तो जैसे बाबा ही खुद कहानी सुनाते थे, हम भक्ति मार्ग में सुनते थे, भाई एक मनुष्य ने बहुत पाप किया था, थोड़े पुण्य किए थे, जब भगवान के घर में गया तो धर्मराज ने पूछा, सेम उसे पूछा, भाई पहले कहां जाएगा, नरक में या स्वर्ग में, पहले कहां जाएगा, तो उसको युक्ति आ गई, कहा मैं स्वर्ग में जाऊंगा, कुछ तो श्रेष्ठ कर्म है ना, अच्छा स्वर्ग में, तो उसने समझा स्वर्ग में चला जाऊंगा तो नरक में वाले मुझे वहां लेने थोड़ी आएंगे, तो ये की युक्ति कर ली अच्छी तरह से, चला गया स्वर्ग में। स्वर्ग में चले जाने से क्या हुआ, जो पाप कर्म किए हुए थे वो यही रह गए, वो नाश हो गए उस बेचारे के, तो थोड़े भी श्रेष्ठ कर्म करने से उनको स्मृति आ गई, अभी तो स्वर्ग में जाऊं, पीछे को देखा जाएगा। तो रियली हमारे अनेक विकर्म अनेक पाप यहाँ वाले या नाश हो जाते हैं, अगर हम अपने आप को स्वर्ग में जाने के पहले अधिकारी बना ले, तो जितने निराकारी स्थिति में स्थित होने की अंदर लगन होती है ना, वो निर्विकारी बनते जाते हैं एकदम, और वहां अहंकार है ही नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार, वो तो असुख्यम तक बहुत सुख्यम तक भी पहुंचता है, पता है ना आप लोगों को, अहंकार ऐसा है सुख्य वतन तक वो पहुंच जाता है, वहां तक भी टेस्ट करता है, पर अभी तो चले गई सुख्य वतन में थोड़े समय के लिए, बाबा से मिली, बाबा से बातें की, फलाना किया, टीरा किया, ट्रांस में गई या कुछ भी हुआ, टचिंग आई, एक्यूरेट यानी बाबा ने जो मुझे टच किया, आप रे आए,
यहाँ से जो बोल चाल यहाँ का फिर जो है ना उसमें सब अहंकार मिक्स होता जाता है। अरे मैं तो बाबा से रूबरू मिल गया, मैं तो बाबा को देख लिया, मैंने तो बहुत अच्छा अनुभव है, तो अहंकार वहां भी पहुंच गया, वहां से लेके आया। बोल चाल यहाँ जो इतना, अरे कहाँ से तुम लौटे हो, क्या बोल रहे हो, इसलिए निराकारी स्थिति ऐसी प्योर स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदा चेक करें तो अहंकार तो नहीं अंदर घुसता है, वो ज्ञान में भी घुसता है तो योग में भी घुसता है तो धारणा में भी घुसता है, सब में घुसता है, जानता घूमता है हमारे पीछे। खास ज्ञानी का महादुश्मन है। त्यागी का भी, त्याग का भी माना जाता है, मैंने इतना छोड़ा, छोरा क्या, छोरा छोरा क्या है, हम तो कभी नहीं कहते हमने छोरा, क्या छोरा है, छुराया है बाबा ने, बाबा ने छुराया है, बलहारी बाबा की जिसने मुझे छुराया है। कलयुगी दुनिया से बाबा ने अपना बना करके मुझे छुराया, मैंने नहीं छोड़ा, हम तो फंसे हुए थे, लटके हुए थे, चटके हुए थे, भगवान ने युक्तियां रख करके छुराया है, अपनी दृष्टि देकर के, अपना प्यार देकर के, अपने ज्ञान देकर के, अपने अपना बना करके छुराया है। छोरा किसने नहीं है, किसने छोरा है, किसने छोरा नहीं है, अगर छोड़ने चाहे ना छोड़ नहीं सकते, इतने लटके हुए थे, इतना करबंधन कर रहा। हमारा अनुभव कहता है बाबा ने छुराया है, मनुष्य मरने तक भी नहीं छोड़ता है, मरने की घड़ी आती है तो भी नहीं कहते मैं कैसे छोड़ू, कैसे छोड़ू, कैसे छोड़ू, मोह जाता है, ममत जाता है, इधर जाता है, और जिंदा होते रहे बाबा ने मार दिया रहे। ऐसा अनुभव करो आप, मरे मर गई दुनिया मेरे लिए, किसने हमारे से क्वेश्चन पूछा तो तुमको कभी लौकिक याद आया, जब इससे ज्ञान में आई हो तो उस घड़ी में मुस्कुराती, जिस दिन बाबा के पास आई फिर उस दिन से ये पता नहीं घड़ी घड़ी यही अंदर से याद आता था शब्द, आप मरे मर गई दुनिया, ऐसे महिले मर गई, जिंदा है बहुत लेकिन उनके लिए मैं मर गई, मेरे लिए वो मर गए, न हम कह सकती है तू मेरा, न वो कह सकते तू मेरी, खबरदार। मैंने कहा प्रभु मैं तेरी, प्रभु ने कहा बच्ची तू है मेरी, ये अंदर की जो हमारा, उसने कह दिया तू मेरी मैं तेरा, मैंने कहा मैं तेरी तू मेरा, इतना अच्छा सौदा हो गया, कितना बड़ा सौदा हो गया है, कोई घड़ी नहीं ऐसी सामने आई है जो कोई कह सके तू है मेरी, न मैं कह सकती हूँ तू है मेरा, छी अच्छा छी छी लगता है, अनेक जन्मों के पुराने हिसाब किताबों से छूट गए, तो बाबा ने कह दिया, तो आप लोगों को पता है, तो मेरे को पहले पहले एक थोड़ी चरित्र सुना देती हूँ, तो अंदर से थोड़ा समय बहुत तरफन थी, जल्दी जल्दी मैं बंधन से मुक्त होकर के बाबा के पास जाऊं, और ये भी थोड़ा पहले सुना दी, पहले पहले मुझे बाबा अच्छा क्यों लगा, बहुत अच्छा लगा बाबा। एक बारी बाबा को ऐसे मैं जानती थी, पहले भी जानती थी, भक्ति मार्ग में भी जानती थी, लौकिक और नस्तिक संबंध में होने के कारण जानती थी, तभी भी बाबा मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं कहती थी ये अगर मेरा बाप हो जाता तो बहुत अच्छा। निर्मल शांता हमारे साथ क्लास में स्कूल में पढ़ती थी, हम कहती थी इसका बाप बड़ा अच्छा है, तो हमारे लोग के बाप को खराब लगता था उसको, ये भाई कोई खराब बाप हूं तेरा, तो मैं उसको कैसे कहूं तुम खराब है, तो वो तो समझेगा ना मैं तुम इतना प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, कोई कमी नहीं है, भक्ति भी कोई कमी नहीं है, कोई धन की कमी नहीं है, कोई फलाने की कमी नहीं, कोई प्यार की कमी नहीं है, कभी घर में मैंने न गुस्सा खाया है न गुस्सा किया है, न वो जानती नहीं है कभी, आप लोग बताए एक ही बारी मैंने गुस्सा बाप ने थोड़ा किया है, पता है क्यों, किसको पता है, एक बारी लौकिक बाप ने गुस्सा किया है, सिर्फ मैंने पान खाया था तो पान कोई हमको दिल से नहीं खाया था, लेकिन हमारे लोग के घर की सिस्टम ऐसी थी कभी भी कोई नानी के घर मामी के घर कहां जाते नहीं थे, कहां रात नहीं रही होंगी, कहां किसके पास भी नहीं, वो भले हमारे घर में आकर रहे हम कहां नहीं रहते थे, शादी थी तो सिंध में रवाज है शादी पर रात को पान खिलाते हैं बिचारी को, बढ़िया बढ़िया पान देते हैं, तो हमको पता ही नहीं था पान हमको नहीं खाने का है, तो मैंने करके मिला, मुझे मिला मैंने पान, वैसे तो कभी बाजार की चीज कभी कोई खाई नहीं है, कुछ नहीं खाया है, प्याज लहसुन भी मेरे पेट में नहीं गया होगा, बहुत नहीं गया है, और छीछी चीजें तो देखी भी नहीं है कभी, तो मैंने पान खाया तो पान में ये थोड़ा मुख लाल हो गया, तो बाप ने इस पर डांटा, तो लड़की का ये नहीं होना चाहिए, मैंने कहा मुझे क्या पता, रात को 11 बजे कहे तुम घर से निकल जाओ, मैंने कहा ये पहला बार इसका इतना गुस्सा, वो गुस्से ने 8 दिन तक मुझे बहुत सिखाया, कभी हम बाजार से ऐसे नहीं चली होंगी, ऐसे ऐसे देखूं तो लड़की हो खबरदार, ऐसे नहीं देख, ऐसे से नहीं कर, कभी शॉपिंग नहीं की है ना करती है, कोई बाजार में ये चीज अच्छी पता ही नहीं है, तो ये समझो तो कौन सा खराब हुआ, तो हम पर फिर बाबा बड़ा अच्छा लगे, ऐसे लगता था पता नहीं बाबा के चेहरे में इतनी चमक, इतना अच्छा था, तो एक बार हम पैदल कर तो बाबा हमारे पहले ही जा गया था, बाबा बागीचे से ऐसे आ रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं, बाबा के साथ कौन था मुझे वो याद नहीं है, जब हम जा रहे हैं तो मैं ऐसे सामने बाबा को देखा, जब देखा मुझे एकदम बाबा विष्णु लगा, एकदम विष्णु, इतना सुंदर, इतना ये नहीं लगा, तो अंदर से आया ये मेरा बाप नहीं तू मेरा बाप है तो हमारा लौकिक भाव देखने लगा, ये तो ऐसे उसको देख रही है, और बाबा मुझे बड़ी दृष्टि से देख रहा था, बड़े प्यार से देख रहा था, तो लौकिक फादर थोड़ा हमारा लौकिक बाबा से थोड़ा छोटा था उम्र का, तो बाबा को पांव पड़ा, रवाज है बाबा को पांव पड़ा, तो बाबा ने उठा के उसको गले लगाया, अभी मेरे को कोई गले बले भी नहीं लगाया, उसको उठा के गले भी लगाया लेकिन उसको ये अनुभव नहीं हुआ और हमको अनुभव हुआ, तो मैंने कहा आपने देखा आज दादा भाई कितनी लाइट थी, कैसा साक्षात विष्णु था, कहा तुमने देखा, मैंने तो नहीं देखा, मैंने कहा आपको नेत्र नहीं है दूसरा अब तो ये मेरा बाबा है, ऐसे बड़ी अंदर से तात लात लगी रही बहुत बाबा के पास, अभी तो उन दिनों में सब कहीं घर छोड़ के जाते थे फलानते थे, पर हम कहते थे अभी क्या होगा, मैं कैसे जाऊंगी बाबा के पास, थोड़ी अमर लोक मर्यादा की बहुत थी, लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, लोग तो चलो अंदर की लगन बहुत, पर उस तरह से लेकर के हम गीता पढ़ रही हूँ कुछ कर रही हूँ ये ऐसे देख रही हूँ बाबा सामने खड़ा है जैसा फरिश्ता, असल आंखों के यहाँ वहां वहां जहां वहां अभी भी मेरे सामने वो घूमता है, सदा ही घूमता है, फरिश्ता है
इधर आंखों के सामने असल घूम रहा है। गीता पढ़ रही हूँ तो गीता पढ़ रही हूँ तो गीता यहाँ रखी है, बाबा सब लिखा रहा है। तो जो क्वेश्चन उठता था ना, योग कैसे लगाऊं, ये योग लग जाता था तो घर वाले मार देते थे, तुम क्या कर गीता पढ़ रही है, ये दादा को याद कर रही है। तो मैंने कहा दादा को तो याद, अंदर से कहते मेरे भगवान मेरे सामने खड़ा हो गया है ना। तो जिस करीब बाबा के पास आई, वो तो हिस्ट्री लंबी चल रही है पर ये बड़ी काम की चीज है, वो बस सुन लो। तो मैं बाबा वहां मैं वहां खड़ी हूँ, सभा थी, बाबा मौली चला रहा है और बाबा यहाँ था। उन दिनों में हमारे पास क्लास की तरह से बैठते थे बेंच, जैसे स्कूल में बेंच होते हैं, पहले दिखाया था ना ये, जैसे ये आजकल एजुकेशन का दिखाते, शुरू में भी ऐसे दिखाया था, ये पढ़ाई है फलाना है ऐसे ऐसे था। तो यहाँ मैं सामने बैठी नहीं, मैं सामने खड़ी हो गई और बाबा यहाँ बैठा। तो मुझे अंदर आया, देखो मुझे बाबा पहचानता है, पहचान स्थूल नहीं, अंदर मेरे क्या है बाबा पहचानता है। तो मैं ऐसे सुनती रही सुनती रही सुनती रही। तो बाबा ने कहा जनक, वैसे जानकी सब कहते बाबा का, जनक आ गई बाबा के पास। जिस करीब बाबा ने ये कहा, मेरे आंखों से आंसू आने लगा, बहुत प्यारा से आंसू आने लगा, मेरी वो घड़ी आ गई बाबा के पास आने। तो फिर बाबा ऐसे जनक जनक कह रहा है, तो जैसे मुझे इशारा कर रहा, आओ नजदीक आओ। मुझे भी हट था, मैं क्यों नजदीक आऊ, तू नहीं आता मेरे पास। मैं आई हूं आपके पास। तो ऐसे बाबा ऐसे करके वहां आया, क्रॉस करके गले लगाया। वो घड़ी थी समर्पण होने की, दिल से जिगर से वो संकल्प जो साकार हो गया, आ गई तेरे पास। तो जिस घड़ी दिल से मैं अंदर से आवाज, मैं आ गई तेरे पास, अभी कहां से आई वो याद नहीं रहा, न रहा कभी, न कोई कर भी सकता। उनको भी ये रहे, ये भगवान की है, हमारी नहीं है। कभी भी सामने कोई आएगा, ये भगवान की हमारी नहीं है। हम आए तो उनको भी ये भान न रहता है, उसके मतलब मेरा बुद्धि अभी तक भान में है, लौकिक में है। इससे क्या होता है, अंदर से फ्री आत्मा होने के कारण देह के बंधन के नाते अंदर से छूट जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। न देह का संबंध खींचता है, न उनके संस्कार भी जो है ना, उनके साथ रहने के कर्म संबंध न हमारे रह सकते, उनके संग में जो हमारे संस्कार बने वो भी हमारे बदल गए। जिसके हैं उसके संस्कार हमारे बढ़ेंगे, अभी किसके हूं, बाबा के। तो जिस बाप की हूं उसके संस्कार मेरे सहज बनने चाहिए। कभी हमको ये अच्छा नहीं लगता है, कभी किसने कहा नहीं होगा ये तो जैसी उसकी बहन, तो जैसी उसकी माँ, हमको बुरा लगेगा, कलंक लगेगा, क्यों नहीं कहते जैसा बाबा। हम बाबा की हो गई तो हमारी भेंट बाबा से होनी चाहिए, या लौकिक के बहन से या भाई से फलाने से टेरे से होना चाहिए। उसका मतलब है अज्जन मेरा कुछ लौकिक के तरह से, उनके तरह से मेरा कोई चाल चलन बोल चाल है, यह है अंदर सूक्ष्म परिवर्तन। कहने में एक शब्द आता है, बाबा मैं तेरी हूं तू मेरा है, इसके अंतर गहराई में कोई जाए, सारे 63 जन्म के हिसाब किताब से कर्म में चुप्त हो जाते हैं, 21 जन्म के बन जाते हैं। वो जो भक्ति मार्ग में कहते थे भगवान मैं जन्म जन्म तेरे साथ रहूं, वो जन्म जन्म का 84 जन्मों का संबंध हिसाब किताब पूज्य पुजारी में इसके साथ बन जाता है। लास्ट जन्म कहां भी था लेकिन लास्ट जन्म में निमित्त वहां जन्म लेकर के आए तो इसके पास। बलहारी इस जन्म की जिसने बाबा दिया मिला है, तो बाबा दिया मिला है तो उस जन्म में तो वो तो इस तरह बलहारी तो जन्म उस जन्म की तो वो हमारे नहीं, उनका अगर कभी कमाई करनी अपनी करे, मैं तो फ्री होके बाबा की हो गई। यही हमारा एक संगम युग है जिस पर हमारा जीते जी मर्जीवा जन्म होता है। पहले तो हिसाब किताब अनुसार जन्म होता है, सत्युग में भी दैवी संबंध से जन्म होता है, कलयुग में कर्म बंधन से जन्म होता है, संगम युग पर हमारे खुशी से जन्म होता है। खुशी से मरना और जीना है हमारा, वहां से मरना यहां से जीना। तो जब बाबा के पूरे बन जाते हैं तो क्या प्यारा लगता है, यज्ञ और परिवार और श्रीमत। जो बाबा कहता है वो बड़ी अच्छी प्यारी लगती है, हर बात बाबा की प्यारी लगती है, शिक्षा देवे चाहे सब सावधानी देवे प्यारी लगती है, अच्छी लगती है, लगता है बाबा अच्छी तरह से शिक्षा सब सावधानी दे करके हमारा अच्छा श्रृंगार कर रहा है। अच्छी लग रही है परिवार, अच्छा लग रहा है, बहुत परिवार से प्यार है। मैं नहीं समझती परिवार में कोई कहेगा तुम मुझे प्यार नहीं करती, मैं कहूं मैं तुमको प्यार नहीं करती, कोई खराब नहीं है, कौन खराब है यहाँ, कौन है हम तो कोई खराब नहीं है। अगर कोई कहे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, किसको कोई खराब लगता है तो हमारी दृष्टि ऐसी है, अगर है भी खराब तो तेरी दृष्टि उसको खराब को अच्छा करे। अगर हमको अपनी दृष्टि बाप समान बनानी है तो पते तो पावन मेरा बाप है, बुरों को अच्छा बिगड़ी को बनाने वाला है, तो हमको क्या करने का। जैसे बाबा ने हमारे में उम्मीदें रख करके हमको अच्छा बनाया, सब में उम्मीद रख करके अच्छे बनो अच्छे बनाओ, सब अच्छे यज्ञ भी बड़ा अच्छे, यज्ञ की सेवा भी बड़ा अच्छी है, जितना करो उतनी थोड़ी है। सब ईशा माता को माई को न बुलाओ, वो माई बहुत खराब है, दूती है सीधा सत्युग से त्रेता में लेके जाती है, वो बीच में गड़बड़ करती है। भागवत के जो चरित्र है ना वो भुला देती है, रामायण की कथा शुरू हो जाती है। क्या रामायण की कथा में है ही क्या, रोना ही रोना, और कुछ है ही नहीं। और भागवत में क्या है, प्रेमी प्रेम, अनुभव ही अनुभव है, हर गोपी का अनुभव ज्ञान। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, नकर रामायण वाली सीता से पूछो, हम कौन है, वही गोप गोपियां हैं। मुरली मिली सब कुछ मिला, कल एक सेकंड थोड़ा बाबा की याद में बैठे हो गया आता है आया बाबा संजय बाबा, अंदर से बाबा ने कहा बाबा अजय आप मिले हो मुझे, क्या कमी है। फिर सारी आयु सामने आई,
कब ये संकल्प आया मुझे ये नहीं है। असल नहीं तो मैं समझती हूँ 84 जन्म भी कभी ये ख्याल नहीं आया होगा मुझे ये नहीं है चीज। भगवान ने सब कुछ दिया है, भगवान ने सब कुछ दिया। ऐसे भगवान ने कर्म श्रेष्ठ भी सिखाए हैं जो कर्म से भी बहुत अच्छा मिला है। कर्म भी अच्छे हैं, भगवान भी अच्छा मिला, भाभी भी अच्छी बनी गई है, बाकी क्या चाहिए। कोई किसके भाग्य से रीस कर नहीं सकता। बड़े हमारे से कोई रीस करे भले करे, तुम भाग्य बनाना, तू रीस काहे को करती है। कोई कहता तुम्हारे से कोई रीस करता, मैं कहती हूँ कर करे भले करे, हम भाग्य बनाना छोड़ दूंगी क्या। हम कहेंगे तुम भी भाग्य बना दे दल है। भाग्य बनाना सबके भाग्य विधाता ने एक द्वार खोल के रखा है, जो चाहे सो बनावे, जिस तरह से चाहे उस तरह से बनावे। छुट्टी है, दाता का दर है, भाग्य विधाता का घर है, बनाओ भाग्य। तो सदा नशे में रहने की एक टेव पर जानी चाहिए। नारी नशा रहेगा कभी युद्ध में समय नहीं गमाएंगे। युद्ध उसके पास चलती है जिसके पास थोड़ी ईर्ष्या माई घुस गई है। छोटे पता नहीं कौन सी बातें मन में सुनाती, मुख से सुनाती, ऐसी बातें करती है जो माथा खराब कर देती है, राम से अलग करने की कोशिश करती है। तो योग लगाने की मेहनत करनी पड़ती है, समझा। वनवास में नहीं रहना है लेकिन मधु वनवास ही होकर के रहना है। वनवास जैसे दूर भगवान से, मधु वनवास ही होकर के रहना, पास रहना। अच्छा टाइम हो गया। ये भी क्वेश्चन आंसर बहुत आ गए होंगे ना, कोई बहुत क्वेश्चन के आंसर आ गए होंगे ना इसमें, आ गए ना बहुत। तो बाकी मुझे दे देना, सुबह क्लास के मुली के बाद सुना लेंगे। सुन लिया बाबा, मैं तेरा तू मेरी। बाबा कहते तू मेरी हो, मैं कहते मैं तेरी, तू मेरा है, बस ये गुनगाओ, खुशी में नाचो। और मेहनत से पुरुषार्थ नहीं करो, कुछ नहीं करो।